Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali Madad. Aziz Hanımın, şeytan ve vesvese ka jo mauzu hai wo bada ahem hai aur khudawand alam ki ye aadat hai ki wo apne giran qadr khazanon ko wahan rakhta hai jahan logon ka gumaan hi nahi hota hai ki isme koi shay hai. ये खुदा की आदत है और वैसे भी लोग शैतान को शैतान समझते हुए नजरअंदाज करते हैं. हालांकि शैतान तो शैतान है, लेकिन उसके बारे में कुरान ने जो कुछ कहा है उसमें बड़े असरार हैं, बड़े असरार हैं, बहुत से बेद हैं. लिहाजा आप हमेशा ये कोशिश कीजिए कि शैतान को शैतान समझते हुए और शैतान को शैतान करार देते हुए उसके मौजू से, उसके सब्जेक्ट से बहुत से बेदू को अख्स करें, बहुत से असरार को पाए कि शैतान एक कमजोर मखलूक है. ये कुरानी हकीकत है और शैतान के पास सिर्फ एक हरबा है और वो कुल कमाल एक आवाज है और उसी आवाज से वो काम लेता है. कभी ये आवाज वो वसवसे के तौर पर पेश करता है, कभी गलत ख्यालात के तौर पर, कभी इस आवाज को एक दावत मुकम्मल एक बुलावे की सूरत में भी पेश कर सकता है. और शैतान जाहिर में भी है और बातिन में भी है. कितनी अच्छी बात है कि इस्माइली मजहब ने हमको सिखाया कि हमारा दुश्मन कहां कहां है. और ये बात तो बहुत से मजाहिब में नहीं है. वो लोग शैतान की शिनाख्त नहीं रखते हैं. कितनी बड़ी सआदत है कि कोई खुश नसीब इंसान अपने दुश्मन को पहचानता है और बदनसीब है वो शख्स जो अपने दुश्मन को नहीं पहचानता, और खासकर दीनी दुश्मन को. यानी अगर हम शैतान को पहचानते हैं और ये जानते हैं कि वो इंस में से हैं और जिन में से भी हैं, और इन दोनों में से किसकी बड़ी अहमियत है ये भी जानते हैं, और ये कि हम जो इंसी शैतान है उसको अहमियत देते हैं, जो हमारे सामने का शैतान है उसकी बहुत बड़ी अहमियत है, उसको पहचानेंगे, उससे खुद को बचाएंगे तो जो जिन्नी शैतान है वो हमसे मायूस हो जाएगा, वो हमारे करीब नहीं आएगा. क्योंकि इसी इंसी शैतान की रूह जिन्नी शैतान के उन्वान से काम करती है. और दूसरी बात, आवाज का मुकाबला आवाज से किया जाए और कमजोर आवाज का मुकाबला पुरजोर आवाज से किया जाए. पुरजोर आवाज दो तरह से है, एक तो पुरजोर आवाज इल्म है, एक तो पुरजोर आवाज जिक्र है. इन दो असलहा के होते हुए जईफ शैतान का काम नहीं चलेगा, वो तो मगलूब हो जाएगा. लिहाजा ये दो असलहा आपके पास हैं कि जिक्र और इल्म, ये दोनों आवाज में हैं, दोनों आवाज में हैं. और बेहतरीन आवाज का इस्तेमाल है कि आवाज का मसरफ यानी इस्तेमाल बेहतरीन है कि इसको या तो आप इल्म बनाएं या तो जिक्र बनाएं. शैतान जहां अपनी आवाज को बेहुदा बातें बनाता है, यानी अपनी आवाज को वो इस तरह से सर्फ करता है कि फजूल वसवसे बनाता है, फजूल बातें बनाता है, कमजोर इल्म बनाता है, वहां आप इस आवाज के सरचश्मे को, इस एनर्जी को आप जोरदार इल्म बनाएं
और जोरदार जिक्र बनाएं, फिर तो आप मर्द मुजाहिद हैं, आप शैतान पर गलबा पा सकते हैं। दूसरी बात इस सिलसिले में यह है कि शैतान का जिक्र कुरान में बहुत सी जगहों में है, बहुत से तरीकों में है, और शैतान लाइन है, मलऊन नहीं है, रजीम है, मरजूम नहीं है। खुदा की अजीब हिकमत है और उसने अजीब तरह से शैतान को पेश किया है। शैतान रजीम है, मरजूम नहीं है। का मतलब क्या? रजीम बरवजन फाइल, ये फाइल के मानी में है, मगर लोग मुहावरे के तौर पर इसको कभी मफ़ऊल के मानी में भी लेते हैं। जिस तरह कतील फाइल के मानी में है, तो लेकिन लोग इसको मक्तूल के मानी में भी लेते हैं। कतील फाइल, दरअसल ये कत्ल करने वाला होना चाहिए, लेकिन लोग इसको मक्तूल, कत्ल किया गया, इस मानी में भी लेते हैं। चुनांचे खुदावंद आलम ने इस लफ्ज रजीम को फाइल और मफ़ऊल के दरमियान रखा ताकि अली ज़ाहिर इसको मरजूम माने, लेकिन हमें इसमें मरजूम कहने में एहतियात है। वो इस माना में कि देखें कि किसी बादशाह के दरवाजे पर कुत्ता है, कुत्ता दूर करने का वसीला है, मगर खुद दूर नहीं है, वो भौंकता है। दोस्त और बीगाने में, दुश्मन में तमीज करता है और उस शख्स पर भौंकता नहीं है जो हमेशा आता जाता रहता है, मगर वो बीगाने पर जोर से भौंकता है, हमले भी करता है। तो शैतान खुदावंद के दरवाजे के सामने एक कुत्ते की हैसियत से काम करता है, जो बड़ा शैतान है, उसकी मैं बात करता हूं। तो आपको शयातीन मुख्तलिफ लेवल्स पर मिलेंगे, निचली लेवल से लेकर सबसे ऊंची लेवल तक, और सबसे ऊंची लेवल पर एक शैतान है जो खुदावंद के नूरानी बंगले के सामने है, दरवाजे पर है, वो भौंकता है। इस शैतान का भौंकना किस तरह है? ऐसा नहीं है जो इस गली का कुत्ता भौंकता है, वो तो इल्मी तौर पर भौंकता है, मसाइल की बूछाड़ करता है। अगर आपके पास ऐसा मजबूत इल्म है कि उन मसाइल से आप पर कुछ भी असर नहीं होता है, तो आप आराम आराम से जा सकते हैं, जाने की कोई बात नहीं। बस उस शैतान का काटना भी इस तरह से, क्या आप नहीं देखते हैं कि दुनिया में जो इमाम के मुखालिफिन हैं वो सवालात की बूछाड़ करते हैं, और इन सवालात का नतीजा दो तरह से निकलता है। कोई कमजोर मोमिन ऐसा भी हो सकता है कि इन सवालात के नतीजे में वो दीन से चला जाता है, और ऐसा मोमिन भी हो सकता है कि वो मुजाहिदाना उन सवालात के जवाबात को समझता है और परवाह किए बगैर आगे बढ़ता है और इमाम के दामन से खुद को वाबस्ता किए रखता है। इसी तरह शैतान उन लोगों पर जो मुखलिस हैं कुछ नहीं कर सकता। हमें जानने की जरूरत है कि खुदावंद आलम के हुजूर से जब शैतान को निकाला गया तो उस रोज शैतान ने जो कुछ कहा और खुदावंद ने जैसा फरमाया उसको देखना चाहिए। उसके देखने से पता चलता है कि वहां पर लफ्ज मुखलिस और मुखलिसून आया है, बंदा ही मुखलिस पर शैतान का कोई गलबा नहीं है। अब हमें मुखलिस के फलसफे को जानना चाहिए कि मुखलिस किसे कहते हैं। मुखलिस उसे कहते हैं जो दीन को खालिस, किसी मिलावट के बगैर, किसी आमीजिश के बगैर, किसी शक व शुबा के बगैर दीन को मानता है, इमाम को किसी शक व शुबा के बगैर मानता है। तो यही बात है ना, अगर अकीदे में आलूदगी हो गई तो इस आलूदगी के पीछे पीछे शैतान आएगा, आलाइश के पीछे आएगा, इखलास के पीछे नहीं आएगा। बंदा ये मुखलिस के पीछे शैतान के आने के लिए कोई मौका नहीं है। इसका इशारा यह हुआ कि या तो शैतान से बचाओ अकीदे के बलबोते पर है या इल्म के बलबोते पर है। तो यह भी जाहिर है कि शुरू में तो इल्म नहीं होगा। ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए कि शुरू में इल्म नहीं है तो किसी ने हिकमत का कुरान नहीं पढ़ा है तो वो बस शैतान का लुकमा बन जाए, ये बात नहीं है। जिसके पास इल्म नहीं है तो अकीदा होना चाहिए और अकीदा ही रासिख होना चाहिए। तो जो इल्म नहीं जानता है, अकीदे में महकम है, मजबूत है, अकीदा ही रासिख रखता है, इमाम से वाबस्ता है, कट्टर मोमिन है, तो वो भी मुखलिस है। और जो इल्म की रोशनी में खुद को बचाता है वो भी मुखलिस है। पहला मुखलिस वो है, इब्तदाई मुखलिस, जो अकीदे के बल बोते पर खुद को शैतान से बचाता है। आपको ऐसे बहुत से मोमिनीन मिलेंगे जो कि वो तमीज रखते हैं कि इमाम का दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है, किस से बचना चाहिए और किस पर भरोसा करना चाहिए। ऐसे मोमिनीन बहुत है, तो वो शैतान की जद से महफूज है। और फिर इसके बाद इल्म का मकाम आता है कि इल्म की मदद से मोमिन खुद को बचा सकता है। फैजा करातल कुरान फस्ताइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जब आप इल्म हिकमत के कुरान पढ़ चुके होंगे तो तब आप शैतान से खुदा की पनाह में महफूज रह सकते हैं। तो मतलब ये है कि बड़े पैमाने पर शैतान से बचाव का वसीला इल्म है, और ये पनागाह जो है वो खुदा के वहां है। पनाह का मतलब कोई कौल नहीं है, एक अमल है, इससे एक अमल मुराद है। दूसरे पनाह ये है कि आप वहां से हटकर छाई में आए, और बारिश से पनाह ये है कि किसी छप्पर के नीचे आ जाएं, और अगर पहाड़ से पत्थर गिरते हैं तो उनसे पनाह ये है कि आप किसी गार में जाएं, और अगर दुश्मन से पनाह लेनी है तो किसी छावनी में घुस जाएं, और किसी मुल्क से पनाहगीर हो जाना है तो उस मुल्क को छोड़ें और दूसरे मुल्क में आएं। इन तमाम मिसालों में शैतान से किस तरह पनाह लेनी चाहिए, यानी खुदा की पनाह में किस तरह खुद को महफूज रखना चाहिए, इसकी मिसाल जाहिर है। लेकिन इसके बरक्स आज दुनिया में बहुत से हजरत ऐसे हैं जिनका अकीदा ये है कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ये पढ़ें तो एक दुआ के तौर पर और जादुआना जादू के तौर पर या मजे के तौर पर शख्स जो है वो खुदा की हिफाजत में, खुदा की पनाह में हो सकता है। ऐसा भी अकीदा है, लेकिन कोई हजार बार पढ़े इसको फिर भी शैतान उसको सताएगा और वो शैतान की जद में होगा, जब तक कि अमलन ये न समझ लिया जाए कि शैतान कौन है, इनसी शैतान कौन है, जिन्हीं शैतान कौन है, और उस बचकर खुदा की पनाह में खुद को महफूज करने का तरीका क्या है ये जानना है। अब मैं इस बारे में इससे ज्यादा कुछ अर्ज नहीं करूंगा।